XXX कैब्स एक्स कहानी में एक रात दारू में धुत मैंने घर के लिए कैब बुक की। ड्राइवर रिव्यू मिरर से मुझे हवस भरी निगाहों से देख रहा था, पर मुझे लौड़ों से खेलना बड़ा पसंद है दोस्तों। सुनसान सड़क पर कार में जुदी मैं कैब ड्राइवर से। जैकलिन मस्तानी, बदला हुआ नाम, 23 साल की मस्त लड़की, XXX कैब्स एक्स कहानी का मजा लें। एक रात दारू के नशे में धुत मैंने घर के लिए कैब बुक की। एक टाइट वन पीस रखा था, उसमें मैं बेहद मादक लग रही थी। नशे में पूरी तरह धुत मैं कैब में टांगे फैला कर लेट गई। मैंने बेखौफ आंखें बंद कर ली, लेकिन सोई नहीं थी। चुदाई का मुझे कोई डर नहीं था, क्योंकि मैं भिन्न भिन्न किस्म के लंडों से चुदवाने की शौकीन हूँ। तभी मैंने हल्की सी आँख खोली तो देखा ड्राइवर रिवर व्यू मिरर से मुझे देख रहा था। वो मेरी चूचियों को घूर रहा था और मेरी कांड को भी हवस भरी निगाहों से देख रहा था। लग रहा था कि आज मेरी ये भूल मेरी चूत की चटनी बना ही देगी। काला सांड जैसा इंसान देखकर चूत के अंदर से सुख का झरना बह निकला। कुछ दूर चले थे कि अंधेरे वाले रास्ते में आते ही गाड़ी धीरे चलने लगी। ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर मेरी चूचियाँ फुटबॉल की तरह उछड़ने लगी। मेरी निगाह उससे मिली जब वो मेरी चूचियों को घूर रहा था। वह हड़बड़ा गया, उसने खुद को संभाला और संभल कर चलने की कोशिश की। मैंने कहा, सामने देखकर गाड़ी चलाओ अंकल, नहीं तो गाड़ी ठुक जाएगी। वो बोला, मैडम आपने मुझे कच्चा ड्राइवर समझा है क्या? मैंने कहा, वो बोला, मुझे आता है संभालना। नई गाड़ी, पुरानी गाड़ी, हर तरह की गाड़ी को मैं हैंडल कर लेता हूँ। थोड़ी बातें करके लगा कि हरामी तो है, मगर जबरदस्ती करने वाला नहीं। चुदक्कड़ ज़रूर है, मौका मिलते ही हल्की फुल्की मस्ती करने से पीछे नहीं हटेगा। अब वो बेशर्म होकर मेरे पूरे बदन का मुआयना करने लगा। खुली टांगों के बीच में पैंटी देख सके इसलिए बार बार शीशा ठीक कर रहा था। उसकी पैंट के ऊपर मेरे नजर पड़ी तो देखा लंबा मोटा डंडा उसकी पैंट में तना हुआ था। सांड का लंड नहीं, एकदम रोड जैसा था। उसका लंड देखते ही अपने आप मेरा हाथ मेरी जांघों पर चलने लगा। मेरी जूत लावा बन गई और मैं भूल गई कि मैं कैब में हूँ। मेरी टांगों के बीच का हिस्सा जलने लगा दोस्तों। गाड़ी किनारे लगाकर वो मेरी खिड़की की तरफ आया और थोड़ी दूर खड़ा होकर मूंदने लगा। मुझे उसका काला मोटा लंड देख गया। मूंदने के बाद उसने लंड मसलना शुरू कर दिया। मैं निहार रही थी उसके हथियार को। वो बोला, आप ठीक तो हैं मैडम? अपना हाल बताओ, मैं आपकी क्या मदद करूँ? वो बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठा और एक सुनसान पार्किंग में गाड़ी लगा दी। वो समझ गया था कि मेरी चूत अब गीली हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि ये बात मैं अपने चेहरे से मिटा नहीं पाई थी। गाड़ी खड़ी करके मैंने ट्रिप ख़त्म की। पीछे का गेट खोला और आकर मेरे बगल में बैठ गया। वो मुझे वासना से देखने लगी, पर वो मेरे वन पीस के ऊपर सरकाया और अपनी दोनों उंगलियां सीधी मेरी चूत में डाल दी। फिर क्या था दोस्तों, मेरे मुंह से तो आह निकल गई। मैं समझ पाती कुछ तब तक उस हरामी ने मेरी दोनों चूचियों को बाहर निकाल दिया। फिर धक्का देकर मुझे सीट पर लिटा दिया, चूत पर सीधा हमला बोल दिया। वो मेरी चूत को चाशनी भरी जलेबी की तरह जैसे तैसे चाटने लगा। उसके हल्के दांतों से काट काट कर चूत की फांकों को चबा लिया था। मैं पागल हो गई थी, अपनी गांड उठा उठा कर उसका मुंह में चूत में घुसेड़ने लगी। उसकी जीभ मेरे अंदर का सारा रस चूस रही थी और मैं मस्ती से उसको बोल रही थी कि फाड़ डालो मेरी चूत को साले। वो बोला, बहुतों को चौदा है, लेकिन ऐसी चिकनी चूत आज पहली बार मिली है। कई चूतों के बाद आज देखा कि कोई चूत इतनी गीली भी हो सकती है। छमिया, आज तेरी टाइट चूत में मेरा नाक घर बनाएगा। फाड़ दूंगा चूत चूत कर तेरे चूत को। तेरी जैसी जवान लड़की मैंने कई साल पहले चोदी थी। मैंने कहा, कौन थी? मेरे कार मालिक की बेटी थी। साले की चूत पहाड़ की ठंड में चोदी थी मैंने। मैंने कहा, फिर क्या हुआ? वो कवि बन गया और कविता पढ़ने लगा। जुदाई से आ गया था उसे बुखार, फूल गई थी उसकी चूत मज़ेदार। बताऊंगा कभी फिर कि कैसे उसकी माँ की गांड में धनिया बोया था। वो मुझसे बकचोदी कर रही थी, समझ रही थी ना मर्द मुझे। चोद कर दीवाना बना दिया जब उसे माँ की लोड़ी रो दी थी खाकर मेरा हथियार। ये बोलकर उसने चूत से मुंह हटाया। नंगा ही कैब का गेट खोलकर बाहर निकल गया। फिर उसने आगे का गेट खोला, दोनों फ्रंट सीटें आगे करके बगल में फैल कर बैठ गया। कमर से उठकर उसने मेरी चूत लंड पर सेट की और हाथ छोड़ दिया। उसका काला मोटा लंबा लंड चूत में लेते ही मेरा बदन ऐंठ गया। हाथ छोड़ते ही मैं उसके लंड पर थप से गिरी। काला नाक चूत में घुस चुका था। मैं दर्द से चीख रही थी। एक ही झटके में उसने मेरी जूत को फाड़ दिया। लग रहा था जैसे कुतिया को सांड चोद रहा हो। इतना भयानक लंड, मेरी जूत कांप रही थी जैसे जड़ से ही उखाड़ दी हो उसने। फिर मुझे लिटाकर पैर क्रॉस किए, लंड हल्के हल्के मेरी जूत में घुसाने लगा। लग रहा था जूत में धार धार आरी चल रही है। फिर उसने एक हाथ से मेरे पैर पकड़े और एक हाथ से मेरे दोनों हाथ, कुत्ते की तरह जीभ को लप लपाते हुए मेरे तलवे चाटने लगा। फिर उसने धक्कों की गति बढ़ाई और जूत में लंड गुर्राने लगा। उसने मेरे जूत से पानी निकलता देखा तो हरामी ने अपनी चुसाई की स्पीड और बढ़ा दी। टांगे फैला कर फिर लंड चूत में भरना शुरू किया और उसे जोर जोर से फच फच की आवाज निकल कर कान गूंजना शुरू कर दिया। मैं 10 ही मिनट में झड़ गई दोस्तों। मेरे झड़ने के बाद कुछ तेज झटकों के साथ उसने भी अपना गर्मा गर्म जूस मेरी चूत में उतार दिया। आँख खुली तो देखा मैं बेहोश हो चुकी थी, तब तक चिपक कर सीट पर गिर पड़ी। आँख खुलते ही मैं एक फ्लैट के कमरे में गद्दे पर थी। मैंने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। कपड़े पहनकर बाहर गई तो देखा तो 30 साल का युवक किचन में था। मैं उठी और जाने लगी तो उसने रोका, अभी नहीं मैम, प्लीज़ रुकिए। मुझे क्या पता था सान ड्राइवर से भी बड़ा कमीना किचन में खड़ा था। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो और वो आदमी किधर गया जो मुझे यहाँ लेकर आया था? वो बोला, वो मेरा बाप था जो आपको लाया था। वो आपको रात में 3 बजे लाया था। उस वक्त मोहल्ले में सब सो रहे थे। मैं चुप थी और सुन रही थी। वो आगे बोला, चूँकि मेरा बाप तो शादीशुदा है और मैं उसका कुंवारा बेटा, लोग गलत समझेंगे कि इनके फ्लैट में ये कौन सी लड़की निकली है। मेरे सामने सिर्फ एक लाल गमछा लपेटे उस जवान लड़का मुझे मेरी औकात बता रहा था। और रात को मैं नशे में धुत थे काले गेंडे जैसे मर्द से जुदवा कर उसके साथ बेहोशी की हालत में इस फ्लैट में आई थी। मैंने कहा, मैं कैसे बाहर जा सकती हूँ? वो बोला, अभी नहीं, रात होने के बाद ही जाओ। साला हरामी बड़ा खुश होकर ये बता रहा था कि अब वो मेरी सेवा करेगा, मतलब साफ था। मैंने कहा, ओए सुन, तेरी इज्जत तू देख भोसड़ी के, मैं जा रही हूँ, तेरे बाप की रखेल नहीं हूँ। वो बोला, अरे ऐसे कैसे जा सकती हो, नशे में चूत या तेरे बाप ने केस कर दूंगी, हट जाने दे मुझे, बुद्धि से बैल नहीं हूँ, समझा। वो दौड़कर मेरे पास आया और उसने हाथ से मेरा मुंह दबा दिया, मेरे बदन को कसकर चिपक गया। वो मुझे पकड़कर रूम में ले गया और मेरे हाथ से मेरी गर्दन दबोच दी। फिर उसकी मजबूत पकड़ देखकर मेरे चुतपू ने बसीच गई। उसने मेरी कमर खींची और अपना पूरा शरीर मुझसे सटा लिया। बोला, ना मैडम, हमारी भी इज्जत है, आपकी तरह ही हमारा भी राज रहना ज़रूरी है। साला गजब का हरामी था, मगर मेरे गुस्से को संभाल कर उसने मुझे रुकने पर मजबूर कर ही लिया। वो मुझे धक्का देकर दूर हटाया। उस वक्त उसका लंड मेरी चूत से चिपका हुआ था। टॉवल में उसके लंड की झलक पाई तो चूत में चीटियां रेंगने लगी। मैंने उसे ध्यान से देखा, उसका लंबा शरीर, सांवला बदन, पूरा बदन पत्थर सा कड़क, टॉवल में बड़ा सा उभार, लंड को जो देखते गजब का मूसल लग रहा था। खुद को संभालते हुए मैंने कपड़े बदलने को मांगे। वो वन पीस बहुत टाइट थी तो उसने अपनी लंबी शर्ट दे दी, यही पहन लो, बहुत लंबी है, तुम्हारा काम चल जाएगा। उसके मेरा बदन निहारने की चालाकी मुझे समझ में आ गई। साले के इरादे नेक नहीं थे, मैं भी कौन सी नेक थी। ठीक है, काम चल जाएगा, ये भूलकर मैंने गेट बंद करने की कोशिश की और अपना पर्स देखने लगी। वो बोला, खुला रहने दो, चिल्लाओगे तो क्या करूँगा, आप चेंज करो, मैं नहीं देखूँगा। मैंने कहा, क्या नहीं देखोगे? बोला, तुम्हारी मस्त कांट, चिकनी चूत, मखमली चूचियाँ, बदलो ना आप ऐसे, गेट खोलकर कसम से देखूंगा नहीं। मैं हैरान थी, जैसे ही मैं पलटी, जिस तरफ जमीन का गद्दा बिछा था उधर देखने लगी, अपने कपड़े टटोले तो पाया कि पैंटी नहीं थी। सामने गद्दे के नीचे मेरी काली पैंटी दबी देखी तो समझ गई कि सारा मैंने रात भर मेरा पूरा बदन निहारा है। इसका मुझे इस फ्लैट में रात तक रोकने का मकसद अपनी इज्जत बचाना नहीं था, साले को मेरी जूत बजाने का मूड था। मैं भी चेंज करके बेड पर बैठ गई और अपने पर्स से सिगरेट निकाली और पीने लगी। वो वापस किचन में आ गया और खाना बनाने लगा। 10 मिनट बाद मेरी तरफ देखकर मुड़ा और छुककर कमचे से मुंह पोंछने लगा। आधा गमचा उठा तो मुझे उसका लंबा काला लटकता लण साफ दिखाई दिया। अपने हाथ से लण पकड़कर उसे मसलने लगा और मुझे घूरने लगा। मुझे समझ आ गया था कि मैं दारू पीने की शौकीन हूँ, तो अलमारी से उसने एक घटिया सी विस्की का हाफ निकाल कर मेरे सामने रख दिया। 10 मिनट तक उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया और मैंने विस्की का लंबा घूंट लिया। थोड़ी देर बाद उसने अपना पूरा गमछा उतार कर कंधे पर रख लिया। पसीना पोंछते हुए घूमा तो मैंने देखा कि उसका लंड एकदम कड़क हो चुका था। मेरी तरफ देखकर बोला, जैसे मेरा पिया पूछ रहा हो रोटी बना लोगी। मैं ना बोल सकती थी मगर मेरे मुंह से हाँ निकल गई। किचन में आना पड़ा। पिया समझकर हाँ बोली थी तो खामियाजे में खुद को उसे चुदवाना पड़ा। मस्त लड़ था तो मेरा भी मूड बन गया। अभी वो सुनोगी किचन में क्या हुआ। उसके बुलाने पर मैं चुपचाप किचन में आकर खड़ी हो गई। छोटे से किचन में इतनी दूरी थी कि मैं उसे महसूस कर सकती थी। वो मेरी तरफ सरका और बोला, बेलन नीचे से निकाल लो। बेलन निकालते वक्त उसका लंड मेरे मुंह से पकड़ने जितनी दूरी पर था। बेलन निकालने को मैं घुटनों पर बैठी उसकी टांगों के बीच में आ गई। बार बार उसका लंड देखकर मेरे भी मन में लड्डू फूट रहे थे। बेलन निकालते उसने सेल्फ बंद की और मेरे मुंह को लंड से दबा दिया। उसके लोड़े के बाजू से किसी तरह निकल कर मैं रोटी बनाने को खड़ी हुई। चुपचाप एकदम रोटियां सीखने लगी। उसने पीछे से धक्का देकर मुझे स्लैब से चिपका दिया। ब्रा पैंट निकाल कर उसने मुझे पूरी नंगी कर दी और बोला, अब बना ऐसे ही रोटी, आज तो दे ऐसे चो दूंगा कि तेरी टूट की चोटी खोल दूंगा। कल मेरे बाप ने ठोका होगा, अब मैं ठोक कर बताऊंगा चुत्ते कैसे हैं। रोटियां बनाई तो मुझे पीछे लिपट कर वो मेरे दूधों को मसलता रहा। रोटी बनाने तक क्यों मुझसे चिपक कर बोला, आज तू मेरी बीवी है, उसे मैं नंगी करके ऐसे पकड़ कर खाना बनवाता था, तुझे चोद कर बताऊंगा कि मैं उसको कैसे चोदता था, मैं अपनी बीवी की चोद को कैसे माना था और उसने मेरा लोहा जब मैंने उसकी रगड़ पर चूत चोदी थी। वो बके जा रहा था और मैं सुन रही थी। मेरा बाप हाफ गया था लेने में उसके, जिसने तेड़ी फाड़ दी रात को। सोच मेरा बाप छड़ गया मगर बीवी ने नहीं दिया उसे भाव। फिर झाड़ कर उतारा था मैंने बीवी का घमंड और बाप की बेइज्जती का बदला लिया। न जाने क्या क्या बड़बड़ा रहा था। वो बोल रहा था कि बहन की लोड़ी मेरे पैरों पर गिर गई थी, 2 घंटे में 10 बार छड़ी थी। रोटी बनने के बाद वो बोला, पूरी स्लैब तो साफ करके मेरे पास आ, थक गई होगी बहुत, आज तेल की तरह तेरी मालिश करूँगा। साला अपने बाप की जैसे कविता पढ़ने लगा था। हर अंग पर लगाऊंगा तेल, निकालूंगा तेरे अंदर की गर्मी, रंडी सुन रही है, आज चोदूंगा तुझे और चुताई का नंबर 39वां करूंगा खेल। उसकी बातों से मैं तो डर ही गई थी। इस कहानी का अगला भाग दोस्तों बड़ा मस्त है। बस मेरे साथ आप बने रहिए और सुनते रहिए।